पाठ 25 अध्याय 17 और 18
लेव्य व्यवस्था 17 का अध्ययन फिर से शुरू करते हुए हमने रक्त के विषय पर चर्चा छोड़ दी और संदर्भ यह था कि जब तक महाप्रलय तक मनुष्य कभी कभी जानवरों को मार सकता था, लेकिन यह केवल प्रभु को बलिदान के उद्देश्य से था। भोजन के स्रोत के रूप में जानवरों को प्रतिबंधित किया गया था जब तक कि नूह को उत्पत्ति 9 में विशिष्ट निर्देश नहीं मिला। जब पृथ्वी बार के पानी के माध्यम से दुष्टता से शुद्ध हो गई थी, तब तक मनुष्य किसी भी प्रकार के जानवर को मारने और खाने के लिए स्वतंत्र था। हालांकि उत्पत्ति 9 पद 4 में मांस को भोजन के रूप में उपयोग करने के बारे में कुछ नियम दिए गए हैं, इसमें कहा गया है कि अब मनुष्य के लिए जीवित प्राणियों का मांस खाना ठीक है, लेकिन उसे उस प्राणी का खून नहीं खाना चाहिए क्योंकि जीवन खून में होता है। आइए इसका सामना करें कि शुरुआती मनुष्य भी जानता था कि अगर किसी को कट लग जाए और उसके शरीर से पर्याप्त मात्रा में खून बह जाए तो वह मर जाता है। खून नहीं तो जीवन नहीं, तो वास्तव में जीवन सचमुच खून में था। इसके अलावा जबकि परमेश्वर ने रक्त को भोजन के लिए अनुपयुक्त बनाया था, उसने रक्त को केवल प्रायश्चित के उद्देश्य से समर्पित किया। पैटर्न स्पष्ट था, किसी को प्रायश्चित के स्रोत रक्त जैसी पवित्र चीज खाने की अनुमति नहीं थी। रक्त का आध्यात्मिक उद्देश्य जीवन और प्रायश्चित था, इसलिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए रक्त का उपयोग करना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। खून बहाने या खून खाने के निषेध के बारे में मैंने जो कुछ आपको बताया है, उससे हमें यह समझने की जरूरत है कि यह खून निषेध कई स्तरों पर लागू होता है। संक्षेप में, शब्द शफाख दाम, जिसका अर्थ है खून बहाना, या संक्षेप में सिर्फ खून, ज्यादातर ऐसे मामलों पर लागू होता है जहां खून का दुरुपयोग किया जाता है। बाइबल के अनुसार हत्या खून का दुरुपयोग है क्योंकि यह जीवन को समाप्त कर देती है। जानवर का खून पीना दुरुपयोग है क्योंकि खून प्रायश्चित के लिए है न कि जीविका के लिए। पवित्र तंबू के बाहर और परमेश्वर द्वारा निर्धारित अनुष्ठान बलिदान के अलावा किसी अन्य तरीके से जानवर की जान लेना खून का दुरुपयोग है क्योंकि प्रायश्चित केवल पवित्र भूमि के अंदर ही उपलब्ध है। पवित्र स्थान के बाहर खून लेना सिर्फ स्वार्थी रूप से जीवन को समाप्त करना है और बर्बादी है। किसी अन्य देवता को पशु की बलि देना रक्त का दुरुपयोग है क्योंकि हमारे पवित्र ईश्वर द्वारा बनाए गए जीवित प्राणी का उपयोग किसी दानव किसी अन्य सृजित प्राणी को महिमा मंडित करने के लिए किया जा रहा है या फिर यह किसी की कल्पना मात्र है। और ऐसे कई और उदाहरण हैं जिनके बारे में हमें अभी बताने की आवश्यकता नहीं है।
तो चलिए हम खून या खून बहाने के अपराध की प्रकृति के बारे में अपनी नई समझ को नए नियम पर लागू करते हैं। 49 ईस्वी की उस निर्णायक यरूशलम परिषद की बैठक में, जब संत पौलुस यीशु के भाई याकूब द जस्ट, जो उस समय यरूशलम में चर्च के प्रमुख थे, के पास गए ताकि मसीहाई आंदोलन के यहूदी नेतृत्व से अनुरोध किया जा सके कि वे मसीह की पूजा करने के लिए गैर यहूदियों को यहूदी धर्म अपनाने की आवश्यकता से पीछे हटें और गैर यहूदियों के लिए कुछ नियम स्थापित करें जो यहूदी शुद्धता प्रावधानों को संतुष्ट करेंगे और इस तरह गैर यहूदियों और यहूदियों को यहूदी आराधनालयों में एक साथ पूजा करने की अनुमति देंगे। वास्तव में परिणाम ऐसा था कि कई प्रतिबंध हटा दिए गए और कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को गैर यहूदियों पर लागू कर दिया गया और इनमें से कई आदेशों को चर्च के नेताओं द्वारा दुखद रूप से गलत समझा गया, गलत तरीके से लागू किया गया और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।
प्रेरितों के काम 15:20 में दर्ज गैर यहूदी विश्वासियों के लिए उन आवश्यकताओं में से एक में कहा गया है कि गैर यहूदियों को खून से दूर रहना है, के काम 15:20। लेकिन हम उन्हें लिखते हैं कि वे मूर्तियों से दूषित चीजों और व्यभिचार और गला घोंटे गए जानवरों से और खून से दूर रहें। खून से वाक्यांश बिल्कुल उसी बात से संबंधित है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गैर यहूदियों को खून के किसी भी दुरुपयोग से बचना चाहिए, हत्या से लेकर खून न पीना, मांस का सारा खून न बहाना, किसी दूसरे देवता को जानवर की बलि न चढ़ाना। खून के बारे में जो भी शास्त्रीय नियम और विनियम मौजूद थे उनका चर्च के गैर यहूदी दल द्वारा पालन किया जाना था। और जबकि मैं अभी इस पर बात नहीं करूंगा, इसमें उस समय के सभी यहूदी प्रावधान भी शामिल हैं जो इस बारे में थे कि किसी जानवर को कहां और किस तरह से मारा जाना चाहिए। पशुवध के बारे में नियम लैव्य व्यवस्था के समय से थोड़े बदल गए। जब यहोशू ने इसराइल को कनान की भूमि में ले जाया तब किसी जानवर को तंबू में ले जाना और पुजारी से उसका वध करवाना इतना सुविधाजनक नहीं था। ठीक है, आइए लैव्य व्यवस्था 17 के पाठों पर वापस आते हैं। आइए शुरुआत करने के लिए लैव्य व्यवस्था 17 को पुनः पढ़ें।
व्यवस्था अध्याय 17 को पुनः पढ़ें। पहले 4 पदों में हमें बताया गया है कि भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी पालतू जानवरों को पहले बलि का हिस्सा होना चाहिए और यह सभी सावधानी से तैयार किए गए ईश्वर निर्धारित बलिदान अनुष्ठानों के अनुसार किया जाना था, जिसका मतलब था कि यह तंबू में होना चाहिए। अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो उसने खून या खून का अपराध किया है और इसलिए वह ईश्वर द्वारा काट दिया क्रेट जा सकता है।
पद 5 यह स्पष्ट करता है कि रक्त से संबंधित यह अध्यादेश कोई पूर्व आक्रमण नहीं था। इसराइली वर्तमान में खुले मैदानों में अपने झुंडों और पशुओं में से जानवरों को मार रहे थे, यह सोचकर कि यह गिनती में नहीं आता। विचार यह था कि यदि वे इसराइल के शिविर के बाहर थे तो रक्त पर परमेश्वर के नियम लागू नहीं होते। इसके अलावा इसराइली बहुत संभवतः छोटी छोटी कच्ची वेदियां बना रहे थे और इनमें से कुछ जानवरों को उन देवताओं को चढ़ा रहे थे जिनकी पूजा करना उन्होंने मिस्र में सीखा था, या यहां तक कि यहोवा को बलि चढ़ा रहे थे यह सोचकर कि उन्हें अभी भी ऐसा करने का अधिकार है। याद रखें, पुजारी की स्थापना तक, जिसे परमेश्वर ने कुछ सप्ताह पहले ही नियुक्त किया था, प्रत्येक इब्रानी परिवार का वरिष्ठ ज्येष्ठ पुत्र परिवार के लिए अनुष्ठान करने वाले के रूप में कार्य करता था। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रक्त के बारे में ये नियम इन सभी विदेशियों के लिए भी थे, मिश्रित भीड़ जो इब्रानियों में से थे, साथ ही याकूब के प्राकृतिक वंशजों के लिए भी। जब इसराइल जंगल में था तो परमेश्वर ने भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी जानवरों को पहले पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ाने की मांग क्यों की, और फिर जब वे कनान की भूमि में प्रवेश करते हैं तो वह इस प्रक्रिया में कुछ डील क्यों देता है? जैसा कि हमने देखा है कि यह एक शिक्षण प्रक्रिया थी। यहोवा इसराइल से 400 साल के मिस्र को बाहर निकालने के बीच में था और उन गैर इसराइलियों को दिखा रहा था जो उसके लोगों के बीच रहते थे कि उनके पास अपने खिलाफ आने वाले राष्ट्र पर निर्माण लाने के अलावा और भी बहुत कुछ था। इसराइल को अपने पुराने तरीकों को भूलते हुए कुछ नए तरीके अपनाने में 40 साल जंगल में बिताने पड़े। एक बार जब वे कनान में पहुंच गए और पूरे देश में फैल गए तो यह लगभग असंभव था कि सभी मांस को कई दिनों की यात्रा करके तंबू के स्थान पर लाया जाए और सालों बाद यरूशलेम के मंदिर में वध के लिए जब भोजन की बात आती थी। हालांकि सबक सिखाया जा चुका था और यहोवा की यह शर्त कि बलिदान केवल उसके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही किया जाए बरकरार रही और किसी भी विचलन की अनुमति नहीं थी। अब आप में से जो लोग हमारे लैव्य व्यवस्था अध्ययन में बारीकी से ध्यान दे रहे हैं उनके लिए हम पद 5-8 में एक दिलचस्प बारीकियां देखते हैं। हमने अब तक बलिदानों के 5 बुनियादी वर्गीकरण या श्रेणियों का अध्ययन किया है, ओलाह, मिंचाह, हतात, आशम और जैवा शैलामेव। इनमें से प्रत्येक बलिदान श्रेणी एक निश्चित कारण के लिए है, प्रत्येक का एक निश्चित अनुष्ठान है और प्रत्येक का एक निश्चित अवसर है जिस पर इसे किया जाना है। बलिदान की इन श्रेणियों में से कुछ अनिवार्य हैं, यानी वे स्वैच्छिक नहीं हैं और उन्हें तभी किया जाना चाहिए जब कानून कहता है कि उन्हें किया जाना चाहिए या कोई अप्रिय परिणाम हो सकता है। इन बलिदान श्रेणियों में से अन्य स्वैच्छिक हैं और आम तौर पर उपासक खुद तय करता है कि वह इसे कब और क्या परमेश्वर को चढ़ाने जा रहा है। सामने लाए जाने वाले बलिदान के प्रकार के संदर्भ में जेवा शैलामिम है। इसका महत्व यह है कि कि यह एक प्रकार का प्रसाद है जिसे उपासक के निर्णय पर प्रभु के पास लाया जा सकता है। इसलिए एक इजरायली जो यह तय करता है कि उसके परिवार के लिए मांस खाने का समय आ गया है, वह अपनी इच्छा से जेवा शेला में प्रसाद ला सकता है और अपने कंधों पर पशु के शेष भाग के साथ पवित्र स्थान से घर जा सकता है। इसके अलावा कुछ प्रसादों को आग से पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना था, अन्य में जो भाग जले नहीं थे उन्हें पुजारियों को दिया जाना था ताकि उपासक को अपने लिए पशु का कोई हिस्सा न मिले। हालांकि जेवा शेला मिम ने बलि के पशु के बड़े हिस्से को उपासक को देने का प्रबंध किया, इसलिए जैसा कि मैंने कई महीनों पहले उल्लेख किया था, इस और अन्य कारणों से जेवा शेला मिम बलिदान निस्संदेह सबसे अधिक किए जाने वाले बलिदान थे, कम से कम जब वे जंगल में थे।
पद 8 यह स्पष्ट करता है कि ये सभी नियम इसराइल के बीच रहने वाले विदेशियों के साथ साथ प्राकृतिक इसराइलियों पर भी लागू होते हैं, और यद्यपि यह अनुवाद में खो जाता है, पद 8 सार रूप में स्पष्ट करता है कि बलिदान की पूरी श्रृंखला बिना किसी अपवाद के हर श्रेणी तंबू में की जानी चाहिए। क्या आपने देखा कि यह कहां कहता है, उनसे यह भी कहो कि यदि इसराइल के घराने या उनके बीच रहने वाले प्रदेशियों में से कोई होम बलि या बलि चढ़ाए, खैर मूल इब्रानी में होम बलि ओलाह है और इब्रानी में बलिदान शब्द जेवा है, जेवा शेलामिम का संक्षिप्त रूप। ओलाह सभी बलिदानों में प्रमुख है और इसलिए यह सब प्रभु को जाता है, यहां तक कि याजकों को भी मांस नहीं मिलता। इसके अलावा यह सभी बलिदानों में सबसे सख्ती से अनिवार्य है। जेवा ओलाह से बिल्कुल विपरीत है, जेवा वह है जो ज्यादातर मामलों में पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसे जितनी बार या जितनी बार उपासक तय करता है उतनी बार चढ़ाया जा सकता है, और यह एक ऐसा बलिदान है जिसमें उपासक अपने लिए मांस का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। इसलिए यहां यह कहने का विचार कि अगर कोई होम बलि ओलाह या बलिदान जेवा चढ़ाता है तो यह हमारे अमेरिकी कहावत ए से जेड तक या सूप से नट्स तक जैसा है, यह सभी को शामिल करने का संकेत देता है।
अब हम पद 7 के उन शब्दों को अनदेखा नहीं कर सकते जिसमें कहा गया है कि लोग अब जंगल के बकरे राक्षसों को अपनी बलि नहीं चढ़ाएंगे। जाहिर है कि इजरायली अपने इतिहास के इस मोड़ पर ऐसा कर रहे थे। यह बात और भी स्पष्ट है क्योंकि हमने अभी अभी अध्ययन समाप्त किया है। लैव्य व्यवस्था 16 और योम किप्पुर में बलि का बकरा अनुष्ठान के साथ अजाजेल, जिसके पास बलि का बकरा भेजा गया था, और लैव्य व्यवस्था 17 में बकरी दानव के संदर्भ के बीच एक संबंध है। याद रखें कि अजाजेल और बकरी राक्षसों को दुष्ट शक्तियां माना जाता है जो जंगल के इलाकों पर राज करते हैं। मुझे लगता है कि किसी न किसी अर्थ में वे काफी वास्तविक हैं। ऐसा नहीं है कि वे जरूरी रूप से बकरियों की तरह दिखने वाले राक्षस हैं, लेकिन वास्तव में वे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां और रियासतें हैं जिनका क्षेत्र बंजर रेगिस्तानी क्षेत्र जंगल था, और लोग इजरायली और विदेशी दोनों इन राक्षसों के लिए बलिदान कर रहे थे, और परमेश्वर कहते हैं कि यह अचानक रुक जाना था। इसके अलावा बलि के बकरे की रस्म में जब बलि के बकरे को अजाजेल के पास भेजा गया तो यह किसी भी तरह से बकरी राक्षसों, कुछ ऐसा जो यहां निषिद्ध किया जा रहा है, के लिए बलि का बकरा नहीं था। यह वास्तव में इसके विपरीत था। इसके बजाय बलि के बकरे को इसराइल के सभी पापों और अशुद्धता से भर दिया गया और उसे जंगल में दुष्ट के पास वापस भेज दिया गया। यह सब उसके चेहरे पर फेंक दिया गया परमेश्वर द्वारा एक निंदा के रूप में, और यहोवा की अजेयता और शैतान और उसके सभी राक्षसों पर शक्ति का प्रमाण। फिर पद 10 से 12 में हमें फिर से वही बताया गया है जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि निर्गमन के लोगों की पूरी भीड़ में से किसी को भी खून का भागीदार नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे नष्ट कर दिए जाएंगे। पद 13 एक नया निर्देश शुरू करता है और इसमें गैर घरेलू जानवरों, जंगली जानवरों की हत्या शामिल है। इसलिए अध्याय 17 के पहले 12 पद पालतू जानवरों को संदर्भित करते हैं। अनुमोदित भोजन और बलि स्रोत जो जंगली जानवरों से पूरी तरह से अलग है, जिन्हें भोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन बलि के लिए कभी नहीं। विचार यह है कि जब मनुष्य जानवरों का शिकार करता है, हिरण, मृग, पक्षी उसे अपने शिकार को अभयारण्य की ओर ले जाने और वहां उसे मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन न ही मनुष्य जंगली जानवर का खून पी सकता है, क्योंकि वह जंगली है। खून के प्रावधान सभी मांस पर लागू होते हैं। जंगली जानवर का खून बलि के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसे जानवर से निकालकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। खून में जो जीवन है उसे मिट्टी में वापस कर देना चाहिए, जो इसे परमेश्वर को वापस करना है, और भोजन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खून का इस्तेमाल या तो परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए या उसका निपटाना किया जाना चाहिए। यह कभी भी मनुष्यों के लिए तय नहीं किया जा सकता है, और जंगली जानवरों के लहू के विषय में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की सजा उतनी ही गंभीर है जितनी कि घरेलू जानवरों के लहू के दुरुपयोग की उल्लंघनकर्ता को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। पद 15 और 16 में मिस्र से आए इन शरणार्थियों के लिए रोजमर्रा की बात बताई गई है, जिसका सामना उन्हें जंगल में और वादा किए गए देश में बसने के बाद भी करना पड़ा। किसी मूल्यवान या जंगली जानवर का क्या करें जो प्राकृतिक रूप से मर गया हो या किसी दूसरे जानवर ने उसे मार दिया हो। आखिरकार मांस एक महंगी वस्तु थी और वे इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दिलचस्प बात यह नहीं है कि व्यक्ति को उन तरीकों से मारे गए मांस को खाने के खिलाफ निर्देश दिया गया है, बस ऐसा करने वाला व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है और यह अशुद्धता वर्तमान दिन के अंत तक रहती है, सूर्यास्त तक, और जब तक वह व्यक्ति अनुष्ठान स्नान नहीं करता और अपने कपड़े नहीं धोता। अगर कोई व्यक्ति फिर से शुद्ध होने के लिए यह कदम उठाता है तो सब ठीक है, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो पद 16 में हमें बताया गया है कि उसे अपने अपराध का बोझ उठाना होगा।
आइए एक क्षण रुकें और इस उसे अपने अपराध का भार उठाना होगा टिप्पणी को समझें, क्योंकि हम इसे तोरह और पुराने नियम में कई बार देखेंगे।
हमारे वर्तमान मामले में विचार यह है, यदि कोई व्यक्ति किसी पशु का मांस खाना चाहता है जो प्राकृतिक कारणों से मरा है या आकस्मिक मृत्यु चट्टान से गिरना से मरा है या उस पर किसी अन्य जानवर ने हमला करके उसे मार दिया है, तो उस व्यक्ति ने परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं किया है। परमेश्वर इसकी अनुमति देते हैं। हालांकि यदि कोई व्यक्ति इस अनुमत चीज को करने का विकल्प चुनता है तो इसके साथ हल्का परिणाम होता है कि वह कुछ घंटों के लिए धार्मिक रूप से अशुद्ध हो जाता है और उसे धार्मिक स्नान करना चाहिए और कपड़े धोने चाहिए। यहां परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप या अपराध नहीं है। परमेश्वर वास्तव में ये भी नहीं कह रहे हैं कि वह चाहते हैं कि आप ऐसा न करें। फिर भी इस तरह से मरने वाले जानवर का मांस खाने का विकल्प चुनने पर कुछ शर्तें होती हैं। यहां उन उदाहरणों में से एक और है जो दिखाता है कि अशुद्धता और पाप आवश्यक रूप से सीधे जुड़े नहीं है। इस विशेष परिदृश्य में व्यक्ति थोड़े समय के लिए अशुद्ध हो जाता है, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया है। यह उस महिमा की तरह है जो अपने मासिक चक्र पर है। यदि आप परमेश्वर द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप अभी ऐसा नहीं करते हैं तो आपने यहोवा के विरुद्ध अपराध किया है। इसलिए नहीं कि आपने उस तरीके से मारे गए मांस को खाया है, बल्कि इसलिए कि आप उसकी निर्धारित शुद्धिकरण प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे। इसलिए अपराध सहना का अर्थ है कि आप परमेश्वर की प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल होने के कारण उसके विरुद्ध अपराध के दोषी हैं, और अब किसी प्रकार का न्याय होगा। सटीक दंड यदि कोई हो, समय और स्थान पूरी तरह से यहोवा के विशेष अधिकार पर है। इसके अलावा चूंकि अब आप अपराध सहते हैं, इसलिए आपको प्रायश्चित बलिदान करना चाहिए, ऐसा कुछ जो अनुष्ठान शुद्धता प्रक्रियाओं का पालन करने पर आवश्यक नहीं होता।
आइए अध्याय 18 की ओर बढ़ते हैं। जब हम अध्याय 18 को पढ़ते हैं तो हमें अध्याय 15 की याद आती है, क्योंकि इन आयतों में मानव कामुकता सबसे आगे और केंद्र में है। जब कोई व्यक्ति पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए समय निकालता है, एक बार में कुछ आयतों से ज्यादा और अक्सर पूरी तरह से संदर्भ से बाहर, हम जल्द ही पाते हैं कि बाइबल में मानव कामुकता एक बड़ी भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि कामुकता भौतिक जीवन को फैलाने का एक आधार है।
एक भौतिक जीवन जिसे परमेश्वर ने उस तरह से संचालित करने और गुणा करने के लिए बनाया है। हम इससे बच नहीं सकते, हम नर और मादा हैं, हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं और परमेश्वर ने लिंगों के बीच एक लगभग अनूठा आकर्षण रखा है। परमेश्वर ने हमें न केवल संतानोत्पत्ति के लिए बल्कि आनंद और सुख के लिए भी सेक्स दिया है, बशर्ते ये विवाह की सीमाओं के भीतर हो। और जैसा कि मनुष्यों के बीच होता है, हम दुर्भाग्य से यहोवा द्वारा हमें दिए गए अद्भुत उपहारों का दुरुपयोग करते हैं। कभी कभी दुरुपयोग गलतफहमी से होता है, कभी कभी अज्ञानता से, लेकिन अधिक यह स्पष्ट रूप से अवज्ञा या एक बहुत ही गलत धारणा है कि ईसाई होने के नाते परमेश्वर की आज्ञाएं अब हम पर लागू नहीं होती हैं। अब जितना चर्च एकता की बात करता है और उम्मीद करता है, हम तोड़ हमें जो पाते हैं। और वास्तव में नया नियम में अगर हम वास्तव में इसे पढ़ें और इस पर भरोसा करें कि यह क्या कहता है, यह लगातार विभाजन, चुनाव और अलगाव के ईश्वरीय पैटर्न को ईश्वरीय एकता के साधन के रूप में विस्तारित करता है। इसका मतलब है कि यहोवा ने गतिशीलता और नियम स्थापित किए हैं कि क्या अच्छा है, क्या ईश्वरीय परिभाषित जीवन को बढ़ावा देता है, क्या पवित्र है और क्या शाश्वत है। बाकी सब इन दिव्य शासक गतिशीलता और नियमों के खिलाफ है, उदाहरण के लिए बुराई, मृत्यु, पाप और अल्पकालिक भौतिक। इसलिए यहोवा सभी चीजों को दो बुनियादी श्रेणियों में विभाजित करता है, उसके लिए और उसके खिलाफ। फिर वह चुनता है कि प्रत्येक श्रेणी में किसे या क्या शामिल किया जाएगा। इसके बाद वह दोनों पक्षों के बीच एक गहरी खाई, एक अभेद्य अवरोध बनाता है, वह अलग करता है। यह ईश्वर नहीं है जो हमारी भौतिक दुनिया में लगातार भौतिक एकता की तलाश कर रहा है, यह मनुष्य है। प्रभु आध्यात्मिक एकता की तलाश में है। मनुष्य ने हमेशा उन चीजों को फिर से जोड़ने की कोशिश की है जिन्हें परमेश्वर ने विभाजित और अलग किया है। परमेश्वर तीखे भेद करते हैं। मनुष्य उस भेद को धुंधला करना चाहता है या उन्हें पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। आज हमारे पास तीखे भेद करने के लिए एक नाम है, असहिष्णुता। वर्तमान दुनिया में असहिष्णुता एक बुरी चीज है। हमारे धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी गृह का कहना है कि बेहतर है सहिष्णुता, जिसके द्वारा भेदों को दूर किया जाता है। बाबेल के टॉवर पर निमरोद का विद्रोह लोगों को शारीरिक रूप से एकजुट करने की कोशिश के इर्द गिर्द घूमता था, न कि उन्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विभाजित और अलग होने की अनुमति देने के बजाय। नहीं, यह मसीहा के शरीर में एकता के खिलाफ कोई विवाद नहीं है। ईश्वर एकता है, वह एक है, एचाद। लेकिन यह हमारी एकता की मानवीय धारणा से बिल्कुल अलग है, जिसने चर्च को इतना बुरी तरह से संक्रमित कर दिया है कि जिन इमारतों में हम मिलते हैं उनके अलावा हम विश्वासियों के रूप में जीवन जीने के तरीके के रूप में जो चुनते हैं और बाकी सभी लोग जो चुनते हैं उसके बीच बहुत कम अंतर है। एकता की हमारी धारणा आम सहमति के समान है, जो कि सार्वभौमिक सहमति और एक निष्ठता के लक्ष्य के साथ समझौते द्वारा प्राप्त किए गए समझौते हैं। हम खुद को छोटे छोटे समूहों में तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि हम पर्याप्त रूप से सहज महसूस न करें। फिर समूह के माध्यम से उस छोटे समूह में सभी को एकजुट करने का प्रयास करें और फिर आशा करें कि यह बढ़ेगा। इसे मानवता या मसीह के शरीर के रूप में सोचें, जो एक विशाल घेरे में खड़ा है, हाथ पकड़ रहा है और कंबायाह गा रहा है। बू, यह वह एकता नहीं है जिसे परमेश्वर हमारे लिए चाहता है या चाहता है, बल्कि यहोवा चाहता है कि हम उसके साथ एक आत्मा में हों, मसीह के साथ। अगर मैं मसीह के साथ एक आत्मा में हूं और तुम मसीह के साथ एक आत्मा हो, तो तुम और मैं एकता में हैं। मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता, मैं मसीह का हाथ पकड़ता हूं। रूपकात्मक रूप से बोलते हुए, तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ते, तुम मसीह का हाथ पकड़ते हो, तब हम एक हो जाते हैं। क्या तुम बहुत बड़ा अंतर देखते हो? एक समूह नियंत्रण का तरीका है जो मनुष्य का तरीका है, दूसरा तरीका है कि कैसे प्रभु हमारे साथ आध्यात्मिक संबंध में आता है, उसका तरीका। इसलिए हम लेव्य व्यवस्था 18 में जो देखने जा रहे हैं, वह परमेश्वर द्वारा अच्छे और पवित्र को स्थापित करने और उसे बुरे और अशुद्ध से अलग करने की बाइबल की गाथा का एक और अध्याय है। और उसके पवित्र और अलग राष्ट्र के रूप में इज़राइल को एक का अनुसरण करना है और दूसरे को त्यागना है, ठीक वैसे ही जैसे हमें उन लोगों के रूप में करना है जिन्हें यीशु में विश्वास के द्वारा इज़राइल में रोपा गया है। एक और चीज जिसका हम इस अध्याय में आगे विकास होते देखेंगे वह है परिवार इकाई। यहां हम यहोवा की परिभाषा पाएंगे कि परिवार में कौन शामिल है और कौन नहीं, परिवार इकाई का मुखिया और केंद्र कौन है और कौन नहीं। बाइबल शुरू से लेकर अंत तक पितृसत्तात्मक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, यानी पुरुष पिता नेता हैं और वैसे भी परिवार इकाई के जिम्मेदार पक्ष हैं। मैं राजनीतिक रूप से सही माफी नहीं मांगने जा रहा हूं कि महिलाएं परिवार इकाई की मुखिया नहीं है। परमेश्वर ने इसके लिए माफी नहीं मांगी, इसलिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं दिखती। फिर भी जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि सभी उपहार विकृत और विकृत हो सकते हैं, यह कि पुरुष अपनी पत्नियों और बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करें या उन्हें ईश्वर की नजर में समान मूल्य से कम समझें, मसीह के लिए एक पूर्ण घृणा थी और उन्होंने इसके खिलाफ शिक्षा दी। उन्होंने परिवार के ईश्वर नियुक्त पुरुष नेतृत्व के खिलाफ शिक्षा नहीं दी, उन्होंने पुरुष नेतृत्व द्वारा शक्ति और अधिकार के दुरुपयोग और अपने परिवार की निस्वार्थ रूप से देखभाल करने के कर्तव्य की उपेक्षा के खिलाफ शिक्षा दी। मैं आपको यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि जैसे ही हम अध्याय 18 को पढ़ना शुरू करते हैं, मैं चाहती हूं कि आप जो हम पढ़ रहे हैं उसके संदर्भ को समझें कि ये निर्देश पुरुष दृष्टिकोण से कहे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह निर्देश इसराइली पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं। हर बार इब्रानी समाज के स्तर पर, और यह उन विदेशियों पर भी लागू होता है जो अब इब्रानी समाज की सीमाओं के भीतर रहते हैं, स्वाभाविक रूप से महिलाएं इन फैसलों से प्रभावित होती हैं। लेकिन ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर पुरुषों को क्या करने से रोकता है।
लैव्य व्यवस्था अध्याय 18 पूरा परहें। इस अध्याय का उपयुक्त नाम संभवतः मानव यौन व्यवहार के बारे में परमेश्वर के सिद्धांत है, और हम देखते हैं कि यहोवा दुनिया के व्यवहार और इज़राइल से अपेक्षित व्यवहार तथा इज़राइल से जुड़े लोगों के बीच अंतर करता है। लोगों से कहा जाता है कि उन्हें न तो उन यौन व्यवहारों को जारी रखना है जो उस जगह मिस्र में स्वीकार्य थे जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, न ही उन लोगों की यौन आदतों को अपनाना है जो वर्तमान में उस भूमि पर रहते हैं जिसे इज़राइल भविष्य में अपने अधिकार में ले लेगा, यानी कनानियों। अब स्पष्ट हो जाना चाहिए, अब तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो कहता हो कि ये इज़राइली मिस्र में घृणा की स्थिति में रहते थे और न ही वे उस समाज की अनैतिक प्रकृति के बारे में विशेष रूप से चिंतित थे जिसका सामना उन्हें अंततः कनान में करना था। यह यहोवा ही था जो घृणा और चिंता में था, और वह इज़राइल को अपनी घृणा से अवगत कराने जा रहा था और उन्हें अपने तरीके अपनाने के लिए सिखाएगा। यह सब इज़राइलियों के लिए अपेक्षाकृत नया था, जैसा कि हम कुछ मिनटों में चर्चा करेंगे।
मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर भी ध्यान दें कि ये नियम 10 आज्ञाओं भाग 2 की तरह प्रस्तुत किए गए हैं। उन्हें इज़राइल के लिए उसी तरह से घोषित किया गया है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, तुम ऐसा नहीं करोगे, और फिर करने और न करने की सूची शुरू होती है। और 10 आज्ञाओं की तरह ही परमेश्वर ने इस बारे में जो निर्णय लिए हैं कि इज़राइल यौन नैतिकता से कैसे निपटेगा, इसके लिए ज्यादा कारण नहीं दिए गए हैं सिवाय इस मूलभूत सिद्धांत के कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम्हें भी पवित्र होना चाहिए, या कि परमेश्वर जिन चीजों को प्रतिबंधित करता है वे उसके लिए मामूली जलन से कहीं ज्यादा हैं, वे घृणित हैं। घृणित हैं, वह उन व्यवहारों से घृणा करता है। और सकारात्मक रूप से यह पद 5 में कहा गया है कि जो लोग इन आज्ञाओं का पालन करते हैं वे जीवन का आनंद लेंगे, वास्तविक जीवन, ऐसा जीवन जो परमेश्वर से मिलता है। इसका यह मतलब नहीं है कि इन नियमों में से किसी एक को तोड़ने पर आप जरूर मर जाएंगे। पद 6 प्राथमिक गतिशीलता स्थापित करता है जिस पर आगे की अधिकांश बातें टिकी रहेंगी, और यह है कि आप में से कोई भी, याद रखें जब यह आप कहता है तो इसका मतलब पुरुषों से है। अधिकांश बाइबल ग्रंथों के अनुसार
नग्नता को उजागर करने के लिए अपने शरीर के पास नहीं आएगा, या जैसा कि सीजे भी कहता है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, ताकि उनके साथ यौन संबंध बना सकें। यह यहां चर्चा की जा रही बात के बहुत करीब है। आइए कुछ शब्दों को परिभाषित करने के लिए एक मिनट लें, जो हमें परमेश्वर के वचन में कई जगहों पर मिलेंगे। नग्नता और अपने शरीर को उजागर करना। नग्नता को उजागर करना आम तौर पर विशिष्ट रूप से पुरुष या महिला शरीर के अंगों को संदर्भित करता है, या यह सामान्य रूप से यौन संबंध रखने को संदर्भित करता है। और जब बाइबल अपने स्वयं के शरीर की बात करता है, तो यह करीबी रिश्तेदारों की विकासशील बाइबल परिभाषा को संदर्भित करता है। विचार यह है कि एक आदमी को किसी महिला के साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए जो उसके परिवार के सदस्यों की कुछ सीमाओं के भीतर आती है। तो इस समझ के साथ यह सूची काफी हद तक समझ में आती है कि एक आदमी किसके साथ यौन संबंध बना सकता है और किसके साथ नहीं। लेकिन आपके संस्करण के आधार पर हमें ये अजीब लगने वाले निर्देश मिल सकते हैं, जैसे कि पद 13 में लैव्य व्यवस्था 18:13, अपनी मां की बहन की नग्नता को उजागर न करें क्योंकि वह तुम्हारी मां का शरीर है।
हम इस निर्देश को आसानी से समझ सकते हैं कि एक आदमी को अपनी मां की बहन, अपनी मौसी के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मौसी के अपनी मां का शरीर होने के बारे में क्या कहना है? खैर, जैसा कि आप निस्संदेह समझ गए होंगे, इसका मतलब है कि मां की बहन और मां करीबी जैविक रिश्तेदार हैं, और करीबी रिश्तेदार होने के लिए बाइबल का शब्द किसी के शरीर का होना है। लेकिन हम पहले की आयत पद 7 से क्या समझते हैं? लैव्य व्यवस्था 18:7, अपने पिता का अर्थात अपनी माता का तन न उघारना, वह तेरी माता है उसका तन न उघारना।
जब यह एक आदमी द्वारा अपने पिता की नग्नता को उजागर करने की बात करता है, तो क्या यह एक आदमी द्वारा अपने पिता के साथ समलैंगिक कृत्य करने की बात कर रहा है? नहीं, आपके पिता की नग्नता अधिकारपूर्ण है, यानी यह उस नग्नता को संदर्भित करता है जिसका स्वामित्व आपके पिता के पास है। इस मामले में यह इस बात पर जोर दे रहा है कि आपके पिता के पास आपकी मां तक यौन पहुंच का एकमात्र अधिकार है, वह उनकी और केवल उनकी है। लैव्य व्यवस्था अध्याय 18 के शेष भाग की जांच करने में मेरा बहुत अधिक समय व्यतीत करने का कोई इरादा नहीं है, फिर भी मैं इन आयतों को पर्याप्त रूप से देखना चाहता हूं ताकि हम स्वयं देख सकें कि तोरह कुछ ऐसी बातें कहता है जिनके बारे में कई आधुनिक उदारवादी शिक्षक, पादरी और टिप्पणीकार कहते हैं कि वे वहां नहीं हैं। और इस तरह की मिश्रित कक्षा में विचलित यौन व्यवहार पर चर्चा करना जितना असहज हो सकता है, हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि ईश्वर मानव कामुकता की देखता है और इसके उचित उपयोग और उद्देश्य को अपनी योजनाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। आखिरकार तोरह क्लास का लक्ष्य यह पता लगाना है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, न कि यह मान लेना कि सदियों से सामाजिक परिवर्तनों और राजनीतिक शुद्धता के इर्द गिर्द विकसित हुए ईसाई सिद्धांत ईश्वर के वचन का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसके अलावा ये यौन निषेध, और यही मुख्य रूप से लैव्य व्यवस्था 18 में है, निषिद्ध चीजों की एक सूची मानव प्रजाति के रूप में कैसे विकसित होगा, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम सभी अनुभवजन्य और वैज्ञानिक रूप से जानते हैं कि किसी के परिवार के जीन पूल को बहुत छोटा बनाने में बहुत खतरा है, इसलिए हमारे आधुनिक कानून अनाचार के खिलाफ है। यह दिलचस्प है कि बाइबल में अन्य सभी भयानक और अक्सर शर्मनाक चीजों के साथ इतनी स्पष्टता से चर्चा की गई है कि हम वास्तव में गंभीर जन्म दोषों वाले शिशुओं के बारे में बहुत अधिक प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं सुनते हैं, जो मिश्रित लिंग या मानसिक मंदता का कारण बनते हैं। ओह, मुझे यकीन है कि यह कुछ मात्रा में मौजूद था, लेकिन यह काफी महत्वहीन रहा होगा, कम से कम इसराइलियों के बीच, या निश्चित रूप से इसके बारे में उल्लेख किया गया होगा। और इस तरह के दोषों के इतने महत्वहीन होने का एक प्रमुख कारण इन कानूनों में निहित है, जो संबंधित मनुष्यों के बीच स्वीकार्य अंतर प्रजनन पर सख्त सीमाएं लगाते हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं मानना चाहिए कि यह सब केवल जीव विज्ञान या आनुवंशिकी के बारे में था।
जैसा कि हमने शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बहुत कुछ पाया है, कभी कभी मानव खतरे या मानव लाभ के लिए कानूनों और आदेशों का कोई सीधा संबंध नहीं होता है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। यह यहोवा द्वारा अपने स्वयं के अच्छे कारणों से लिया गया निर्णय था और यही इसका अंत है।
हम अगले सप्ताह कौटुंबिक व्यभिचार और विकृत यौन व्यवहार के जोखिम भरे विषय पर चर्चा करेंगे।